आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में ग्याना की पार्लियामेंट के खसूसी इजलास से खिताब किया और उन्होंने कहा कि भारत और ग्याना के दरमियान रिश्ता खसूसी नौयत का है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीका के उनके हम मनसब लॉयड ऑस्टिन ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की हासिल करदा पेशरफ्त की सताइश की है। कीफ ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बैन बर्रेजमी बैलिस्टिक मिजाइल दागे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा खित्ते में मुसाफिरों की वैन्स पर हुए हमले में 38 शहरी हलाक हो गए हैं। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी की जोड़ी भी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील के लिए जमहूरियत से ज्यादा अजीम कोई आला नहीं है। आज शाम ग्याना की पार्लियामेंट के एक खसूसी इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है जमहूरियत को अव्वलियत, इंसानियत को अव्वलियत। उन्होंने कहा कि जमहूरियत हमारे डीएनए में है, हमारे नजरिए में है और हमारे बर्ताव में है।
आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के किसी भी मुल्क में किसी बुहरान के दौरान भारत की मुखलिसाना कोशिश ये होती है कि वो सबसे पहले इस सिलसिले में कोई कदम बढ़ाए और मदद के लिए वहां तक पहुंचे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और ग्याना के दरमियान रिश्ता बहुत ही खास नौइयत का है। उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 180 साल पहले एक भारतीय शख्स ग्याना पहुंचा था और तब से भारत और ग्याना हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्याना में इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट इस कुर्बत की अलामत है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि ग्याना ने कल उन्हें आला तरीन एजाज से नवाजा, जिसके लिए वो ग्याना के तमाम शहरियों के ममनून हैं।
भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में सुख में कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है।
जनाब मोदी आज ग्याना में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
महात्मा गांधी की आलमी अफादियत की तस्दीक के तौर पर जनाब मोदी आज गयाना में बाबा कौम के मुजस्मे पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। ये 21वां मौका होगा जब वजीर आजम गैर मुल्की सरजमीन पर बापू को खिराज अकीदत पेश करेंगे। गांधी जी की तालीमात के तई जनाब मोदी की गैर मुतजलजल हिमायत सरहदों के पार जा चुकी है। गांधी की अफादियत घरेलू पहल से आगे बढ़कर दुनिया भर में जनाब मोदी की सिफारती मसरूफियात में भी नजर आने लगी है। इस साल अगस्त में वजीर आजम ने जंग के दौरान अमन के जज्बे के तहत यूक्रेन के कीव के अपने दौरे में भी गांधी जी के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश किए थे। गुज़िश्ता साल मई में वजीर आजम ने अमन की अहमियत से बखूबी वाकिफ जापान के शहर हिरोशिमा में गांधी जी के मुजस्मे की नकाबकुशाई की थी, जिससे तारीखी सानहे को मजाहमत की यादगार में बदलना मुमकिन हो सका। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं जमीर रजवी।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की हासिल करदा पेशरफ्त की सताइश की है। यह शराकतदारी कार्रवाई के एतबार से ज्यादा तालमेल, ایک دوسرے کو اپنی معلومات میں شریک کرنے اور صنعتی اختراعات پر مبنی ہیں۔ دونوں لیڈروں نے آج لاؤس کے وینچین میں 11ویں آسیان وزرائے دفاع کی میٹنگ پلس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں ملکوں نے امریکہ بھارت دفاعی صنعتی تعاون کے لائحہ عمل کے تحت کی گئی قابل قدر پیش رفت کا اعتراف کیا، جس میں جیٹ انجنوں، میونیشنز اور گراؤنڈ موبیلٹی سسٹم کے لیے مشترکہ پیداوار کے انتظامات کو اعلی ترین ترجیح دینے کے سلسلے میں جاری شراکت داری شامل ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے کی غرض سے فوجی شراکت داری اور بین کارروائی کو مزید مضبوط کرنے کی جاری کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر دفاع نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب جوڈتھ کولنز کے ساتھ بھی باہمی ملاقات کی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کم یونگ ہیون اور آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب پیٹ کونروئے سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اس ماہ کی 25 تاریخ کو آئی سی اے گلوبل کوآپریٹو کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امداد باہمی کی وزارت میں سیکرٹری ڈاکٹر آشیش کمار بھوٹانی نے بتایا کہ پہلی مرتبہ امداد باہمی کی عالمی کانفرنس اور جنرل اسمبلی بھارت میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی امداد باہمی کے بین الاقوامی سال 2025 کے تعلق سے ایک یادگار ڈاک ٹکٹ بھی جاری کریں گے۔ 6 روزہ کانفرنس کا موضوع ہے، امداد باہمی کے ادارے سبھی کے لیے خوشحالی کی تعمیر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھوٹانی نے بتایا کہ کانفرنس میں اجتماعی پرامن اور سبھی کے لیے خوشحال مستقبل کی تشکیل میں امداد باہمی کے اداروں کے کردار پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ بھوٹان کے وزیر اعظم دسو شیرنگ توبگے اور فیجی کے نائب وزیر اعظم منوا کمیکامی کا بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
بھارت جو سہکارتا سیکٹر میں اس کی جو پکڑ ہے، پہنچ ہے، کافی مضبوط ہے۔ دنیا کے کوآپریٹو ایک ہی بھارت میں ہے اور ہم کئی طرح کے اتپاد پیدا کرتے ہیں۔ فرٹیلائزر ہے، شوگر میں ہماری پکڑ اچھی ہے، رول ٹریڈ میں اچھی پکڑ ہے، ٹیکسٹائل ہینڈلوم میں ہماری پکڑ اچھی ہے۔ ایک پلیٹ فارم ملے گا سب کو اپنی بات رکھنے کا، لوگوں سے سیکھنے کا، سننے کا اور اپنے ویوز اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا۔ تو اس کا اسٹیچر اور بہت اونچا ہے۔ وہاں جو سیکھ کے جائیں گے اسی طرح کی وہاں پالیسی بنائیں گے اور کام کریں گے۔ ہم سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، ہم بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دلی میں آج اسٹوڈنٹ انوویشن اینڈ آؤٹ ریچ نیٹورک کے لیے وکست بھارت مہم ویژن کا افتتاح کیا۔ اس اسکیم کا مقصد غیر مراد یافتہ بچوں کے درمیان تعلیم کی نشو نما، مہارتوں کا فروغ اور اختراعات کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس اسکیم کے پیچھے کار فرما چھوٹے کاروباری اداروں کو فروغ دینے کے نظریے اور ملک بھر کے طالب علموں کے لیے مواقع کو جمہوری طور پر فراہم کرنے کے تعلق سے توجہ کرنے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ کس طرح یہ پورٹل ایسے افراد کے لیے ایک گیٹ وے کے طور پر کام کر سکتا ہے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ مینٹورشپ اور تربیت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ویژن جیسے اقدامات بھارت کے تصور 2047 کے تحت ملک کی امنگوں کو پورا کرنے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس کا مقصد بھارت کو ٹیکنالوجی، تعلیم اور اقتصادی ترقی میں ایک عالمی لیڈر کے طور پر مضبوط بنانا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا کہ این ڈی اے حکومت نے بہتر سڑک رابطہ مہیا کیا ہے تاکہ ملک میں مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ 3,700 کروڑ روپے کی مالیت کے قومی شاہراہوں کے 6 پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر گیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ بدھا سرکٹ کو 4 اور 6 لین والی سڑکوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت رام جانکی سرکٹ کی تعمیر کر رہی ہے، جس سے مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا کیونکہ مقدس مقامات کی عقیدت مندوں کے لیے بے حد اہمیت ہے۔
5,000 کروڑ کی لاگت سے 453 کروڑ کا مارگ رام جانکی مارگ کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے۔ بہار میں 240 کلومیٹر 4 لین رام جانکی مارگ بن رہا ہے، جس میں مہورانا گھاٹ سے سیوان ہو کر مسرت تک 3100 کروڑ کی لاگت سے 90 کلومیٹر 4 لین کا کام فروری 2025 تک شروع ہو جائے گا۔
مرکزی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ان کی وزارت نے اتراکھنڈ میں پتھورا گڑھ کے راستے مانسروور جانے والے یاتریوں کے لیے ایک متبادل سڑک بھی تعمیر کی ہے۔ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने आज कहा कि एक नए ओटीटी प्लेटफॉर्म का आगाज करने के पीछे सिर्फ डिजिटल स्पेस में सेहतमंद मशमूलात को शामिल करने का ही ख्याल नहीं है, बल्कि बच्चों और नौजवानों समेत समाज के सभी तबकात के लिए मवाद फराहम करना भी है। कौमी नशरिये प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स का इफ्तिताह करने के एक दिन बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सहगल ने इत्तला दी कि इस प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन के प्रोग्रामों पर मुश्तमिल आर्काइव्स में मौजूद तमाम वो सामान मौजूद होगा जिसे लोग देखते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्लेटफॉर्म पर उन इलाकाई सकाफती प्रोग्रामों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें विरासत पर तवज्जो की गई है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि बिहार में अगले बरस अप्रैल में खेलो इंडिया नौजवानों के गेम्स और पैरा गेम्स का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार ने खवातीन की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जैसे बड़े खेलकूद के मुकाबलों का इनेकाद करके अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर एक बैन बर्रेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल ICBD से हमला किया है। सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रूस के न्यूक्लियाई निजाम को तब्दील किए जाने के एक दिन बाद यह मिसाइल फेंका गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टार्मर की जानिब से यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाके को निशाना बनाकर मगरबी ममालिक के तवील दूरी वाले क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाजत दिए जाने के कुछ ही दिन बाद रूस की यह सख्त कार्रवाई सामने आई है। बैन अलाक्वामी अदालत इंसाफ ICC ने इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके साबिक दिफाई सरबराह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा ICC ने हम्मास के रहनुमा इब्राहिम अल मुआसरी के खिलाफ भी मुबैना जंगी जरायम और इंसानियत के खिलाफ जरायम के इर्तिकाब की बुनियाद पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तान के शिमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के एक कबाइली इलाके में आज कम से कम 38 अफराद हलाक और 29 दीगर उस वक्त जख्मी हो गए जब एक बंदूक बरदार ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर गोलीबारी कर दी। सूबे के चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने बताया कि यह हमला कुरम के कबाइली जिले में हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा सानहा है और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। भारत के 55वें बैन अलाक्वामी फिल्म फेस्टिवल के मौके पर फन सकाफत लवाजमात और तफरी के साथ साथ इवेंट्स और मौसीकी के लाइव प्रोग्राम को एक ही जगह फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म एफिएस्टा को आज शाम लॉन्च किया गया। इस फेस्टिवल में कई दिलचस्प सरगर्मियां और मौसीकी के प्रोग्राम होंगे जो शुरका का दिल छू लेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने ब्रह्म सिंह तंवर को छतरपुर सीट, सुमेश शौकीन को मटियाला, गौरव शर्मा को गोंडा, वीर सिंह धिंगन को सीमापुरी, चौधरी जुबैर अहमद को सीलमपुर और अनिल झा को किरारी असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में उतारा है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए वजीर आला आतिशी ने खुद को ही अपनी काबीना के किसी रुकन को इंतखाबी मैदान में नहीं उतारा है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन शेनजेंग में खेले जा रहे बैडमिंटन के चाइना मास्टर्स 2024 में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के रास्मोस गेमके को दूसरे राउंड में 21-16, 21-18 से शिकस्त दी। मर्दों के डबल्स में भी चिराग शेट्टी और सात्विक साई राजरंकी रेड्डी पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के रास्मोस कार और फेडरिक सुगार्ड को 21-19, 21-15 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ताहम ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी को खवातीन के डबल्स के दूसरे राउंड में आज दोपहर ली शेंग और तेनिंग की चीनी जोड़ी से 16-21, 11-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने ICC के मर्दों के T20 खिलाड़ियों की ताजा तरीन दर्जाबंदी में दोबारा पहला मकाम हासिल कर लिया है। बल्लेबाजों में भारत के तिलक वर्मा ने एक बड़ी जस्त लगाते हुए सरे फहरिस्त 10वें मकाम से तीसरे मकाम पर पहुंच गए हैं। उनके बाद सूर्य कुमार चौथे मकाम पर रहे, ताहम यशस्वी जायसवाल एक पायदान कम होकर 8वें मकाम पर रहे। गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह अपने साथी रवि बिश्नोई के साथ सरकर्दा 10 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए। अर्शदीप 9वें और रवि एक पायदान कम होकर 8वें पायदान पर रहे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में ग्याना की पार्लियामेंट के खसूसी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत और ग्याना के दरमियान रिश्ता खसूसी नौयत का है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीका के उनके हमनसब लॉयड ऑस्टिन ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की हासिल करदा पेशरफ की सताइश की है। कीफ ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बैन बर्रेआजमी बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। پاکستان میں خیبر پختونخوا خطے میں مسافروں کی وینز پر ہوئے حملے میں 38 شہری ہلاک ہو گئے. اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں بھارت کے کھلاڑی لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. وہیں چراغ شیٹی اور ساتوک سائی راج رنکی ریڈی کی جوڑی بھی مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.